आज है 28 अक्टूबर दिन शुक्रवार। स्वागत है आपका दिन भर में। मैं हूं सुशीला सिंह। सीरिया में अलेप्पो के पूर्वी हिस्से में सरकारी घेराबंदी को तोड़ने के लिए विद्रोही लड़ाकों ने छेड़ा अभियान। भारत प्रशासित कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों के आर पार गोलीबारी जारी। बिहार में हत्या के मामले में अभियुक्त रॉकी यादव की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने की रद्द।
रॉकी यादव के बाहर आने से माहौल जो बिगड़ा है उसको देखते हुए रॉकी यादव की जमानत रद्द कर दी क्योंकि सरकार ने अपना पक्ष मजबूती से रखा।
और आज विवेचना में बात होगी ऐसी गजल गायिका की जिन्हें न केवल उर्दू शायरी की समझ थी बल्कि गजब की आवाज भी थी उनकी।
स्टेशन से गाड़ी अभी जाने ही वाली थी बम्बई से तो शकील साहब भागते भागते आए, सांस फूली, बेगम साहब ये गजल मैंने आपके लिए लिखी है। उनका अच्छा शकील उठा बैग।
सुनेंगे विवेचना लेकिन पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार तृप्ति श्रीवास्तव से। सीरिया के पूर्वी अलेप्पो से सरकार की घेराबंदी हटाने के लिए विद्रोहियों ने हमले शुरू कर दिए हैं। विद्रोहियों ने सुबह 3 बड़े धमाके किए और पश्चिमी अलेप्पो के स्थित सरकारी हवाई अड्डे पर दर्जनों रॉकेट दागे। इन हमलों में 15 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा घायल हुए हैं। सरकार की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई। सरकार ने उत्तरी और पश्चिमी अलेप्पो में हवाई हमले जारी रखे हैं। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि उन्हें पुख्ता रिपोर्ट मिली है कि इस्लामिक स्टेट ग्रुप ने मोसुल से हजारों इराकियों का अपहरण कर लिया है जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। इराक की सरकारी सेना और उसके सहयोगियों को शहर की तरफ तेजी से बढ़ते हुए देखते हुए ऐसे में आईएस की योजना थी कि लोगों को मानव ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने यह भी कहा कि जिहादी गुटों ने इराक के 190 पूर्व सुरक्षा सेना अधिकारियों की हत्या की है। इसके अलावा उन 42 नागरिकों को भी मार डाला जिन्होंने उनका साथ देने से मना कर दिया था। मानवाधिकार उच्चायुक्त के संयुक्त राष्ट्र कार्यालय की प्रवक्ता रवीना शामदसानी ने जिनेवा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बारे में जानकारी दी।
ISIL's depraved, cowardly strategy.
सैन्य ऑपरेशन से बचने के लिए नागरिकों को इस्तेमाल करने की आईएस की खराब और कायरतापूर्ण रणनीति है। वो हजारों पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को मानव ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। जिन लोगों ने उनका साथ देने से मना किया उन्हें वहीं मार दिया गया। ये थे रवीना शामदसानी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। स्वीडिश अभियोजन पक्ष ने विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे के उस अनुरोध को ठुकरा दिया है जिसमें उन्होंने अपने एक सहयोगी के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति मांगी थी। अभियोजन पक्ष का कहना है कि उनके पास अदालत से जारी किए गए यूरोपीय गिरफ्तारी वारंट के विरोध में फैसला देने का अधिकार नहीं है। असांजे बलात्कार के आरोप में पूछताछ के लिए वांटेड हैं। 2012 से वो इक्वाडोर के दूतावास में रह रहे हैं। हालांकि उन्होंने खुद पर लगे आरोपों का खंडन किया है। वेनेजुएला की राजधानी कराकस में राष्ट्रपति निकोलस मदुरो की सरकार के विरोध में शुक्रवार को दुकानें, दफ्तर और स्कूल बंद रहे। कराकस में बसें चल रही हैं लेकिन यात्री रोज के मुकाबले कम नजर आए। विपक्ष ने राष्ट्रपति मदुरो को सत्ता से हटाने के लिए और जनमत संग्रह के लिए 12 घंटे की हड़ताल की है। विपक्ष ने उन पर अर्थव्यवस्था का गलत ढंग से प्रयोग करने के आरोप लगाए हैं। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी वाडा ने ड्रग टेस्ट में सामंजस्य की कमी के लिए रियो ओलंपिक के प्रबंधन की आलोचना की है। वाडा की स्वतंत्र पर्यवेक्षक टीम का कहना है कि कई खिलाड़ी टेस्ट के लिए मिल ही नहीं पाए। योजना में शामिल आधे से ज्यादा टेस्ट तो रद्द करने पड़े। अप्रशिक्षित और अनुभवहीन सहायकों की वजह से परेशानियां हुई। वो टेस्ट के लिए खिलाड़ियों को सही जगह पर ले जाने में असफल रहे। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं दिन भर लाइव रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। आज शुक्रवार है और श्रोताओं को इंतज़ार होगा विवेचना का। आपको सुनवाएंगे विवेचना लेकिन थोड़ा कीजिए इंतज़ार। पहले चर्चा करते हैं सीरिया की। सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो के पूर्वी हिस्से में सरकारी घेराबंदी को तोड़ने के लिए विद्रोही लड़ाकों ने आक्रामक अभियान छेड़ दिया है। ब्रिटेन में मौजूद एक कमांडरिंग ग्रुप का कहना है कि विद्रोहियों ने पश्चिमी अलेप्पो में सैकड़ों मिसाइल दागी हैं जिसमें कम से कम 15 नागरिक मारे गए हैं। उधर रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावारोव ने सीरिया में अमरीका समर्थित विद्रोहियों पर देश के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो में मानवीय गतिविधियों में बाधा खड़ी करने का आरोप लगाया है। बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्टों का सार सुना रहे हैं रोहित जोशी।
अमरीका समर्थित विद्रोही सेनाओं की ओर से पूर्वी एलेप्पो में सरकारी सेनाओं की घेराबंदी तोड़ने के लिए एक आक्रामक अभियान छेड़ने की घोषणा के बाद पूर्वी एलेप्पो में भयानक युद्ध छिड़ गया है। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स का कहना है कि विद्रोहियों ने पश्चिमी एलेप्पो में सैकड़ों मिसाइलें दागी हैं, जिसमें कम से कम 15 नागरिक मारे गए हैं। ऑब्जर्वेटरी के एक प्रवक्ता का कहना है कि विद्रोही सेनाओं ने सरकारी सेनाओं के मोर्चों पर 2 कार बमों का भी विस्फोट किया है। वहीं सीरिया की सरकारी सेना और उसके मददगार रूस ने भी पूर्वी इलाके में हवाई हमले किए हैं। उधर रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने एलेप्पो में मानवीय गतिविधियों में बाधा खड़ी करने का आरोप लगाया है। मॉस्को में अपने सीरिया और ईरानी समकक्षों के साथ एक मुलाकात के बाद उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के मानवीय सहायता पहुंचा रहे कार्यकर्ताओं पर भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि पिछले माह एलेप्पो की ओर ले जाए जा रहे जिस मानवीय सहायता के काफिले को तबाह किया गया था, उसे संयुक्त राष्ट्र के कार्यकर्ता क्यों नहीं एस्कॉर्ट कर रहे थे। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र कार्यकर्ताओं पर बीमार और घायल नागरिकों को शहर से बाहर ले जाने में नाकामयाब होने के भी आरोप लगाए हैं। हमने संयुक्त राष्ट्र के मानवीय सहायता पहुंचा रहे कार्यकर्ताओं के गैर पेशेवराना रवैये पर ध्यान दिया है। उनके कार्रवाई नहीं करने से पूर्वी एलेप्पो की तथाकथित स्थानीय परिषद को मेडिकल इवैक्यूएशन को नुकसान पहुंचाने का मौका मिला। हम इस बात से आहत हैं कि संयुक्त राष्ट्र की मानवीय सहायता एजेंसियों की ओर से की गई सार्वजनिक घोषणाओं में गैर वाजिब राजनीतिक मकसद दिखाई देता है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के शब्द। लावरोव ने यह भी कहा है कि रूस पर इडलिब में एक स्कूल पर बमबारी करने के गलत आरोप लगाए गए हैं। वहीं सीरिया में संयुक्त राष्ट्र के पूर्व दूत लगदार ब्राह्मी का कहना है कि अगर सीरिया में पश्चिमी देश सावधानी से कदम नहीं उठाते हैं तो यह रूस के साथ सीधे सीधे संघर्ष के हालात पैदा कर सकता है। बीबीसी को दिए एक साक्षात्कार में लखदार ब्राह्मी ने कहा कि सीरिया में हितों के टकराव के चलते बन रही असहमतियां नियंत्रण से बाहर जा सकती हैं और बेहद बुरे हालातों में तब्दील हो सकती हैं। हमें इसे लेकर बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है कि कहीं सीरिया हमें वहां न ले चले जहां कोई नहीं जाना चाहता। तुर्कों ने एक रूसी विमान नीचे गिरा दिया और कुछ भी भयानक नहीं हुआ, लेकिन अगर आप दोबारा से ऐसा करते हैं तो क्या आपको ये लगता है कि फिर से ऐसा ही होगा? ऐसे कई लोग हैं जो सीरिया में और भयानक युद्ध की तैयारी में लगे हैं। हमें सावधान रहने की जरूरत है। सीरिया में संयुक्त राष्ट्र के पूर्व दूत लखदार ब्राहिमी के शब्द। पिछले कई महीनों से पूर्वी एलेप्पो शहर में सरकारी सेनाओं की ओर से की गई घेराबंदी के बीच तकरीबन 275,000 लोग मौजूद हैं। सीरिया में चल रहे गृह युद्ध में सेनाओं के 3 मोर्चे बन गए हैं, जिसमें एक तरफ इस्लामिक स्टेट के चरमपंथी हैं तो दूसरी तरफ रूस समर्थित सीरियाई सरकारी सेना और साथ ही तीसरा मोर्चा अमरीका समर्थित विद्रोहियों की सेनाओं का है। लेकिन इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ने का दावा कर रही रूस समर्थित सीरियाई सेना और अमेरिका समर्थित विद्रोही सेनाओं के बीच भी आपसी तनाव गहराता जा रहा है।
पूर्वी एलेप्पो में सरकारी घेराबंदी को तोड़ने के लिए विद्रोहियों ने किए हमले तेज, ये थे रोहित जोशी।
बीबीसी हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
अब रुक करते हैं भारत का। बिहार के गया में चर्चित आदित्य सचदेवा मर्डर मामले के मुख्य अभियुक्त रॉकी यादव को मिली जमानत आज सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी। रॉकी यादव ने एक व्यापारी के युवा बेटे आदित्य सचदेव की गाड़ी ओवरटेक करने के मामले में कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये पूरा मामला और रॉकी के जमानत के रद्द होने पर क्या कहना है सूबे के राजनीतिक दलों का, सुनिए पटना से मनीष शांडिले की ये रिपोर्ट।
इस साल 7 मई की रात 12वीं के छात्र आदित्य सचदेवा की रोड रेज के एक कथित मामले में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गया जिले का यह मामला तब लगातार सुर्खियों में रहा था। इस मर्डर केस के मुख्य अभियुक्त रॉकी यादव को मिली जमानत आज सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी। उन्हें 19 अक्टूबर को पटना हाई कोर्ट से जमानत मिली थी। गया जिले की वरीय पुलिस अधीक्षक गरिमा मलिक ने बीबीसी को बताया कि पुलिस रॉकी को फिर से गिरफ्तार करने के लिए निकल चुकी है।
बेल पर स्टे हो गया है, बेल ऑर्डर जो एचसी का था हाई कोर्ट का, सो दैट मींस बेल जो उनका बेल मिला था वो नहीं मिला हुआ है फिलहाल के लिए. सो दैट मींस दैट वी हैव टू अरेस्ट हिम अगेन एंड वी आर ऑन द जॉब. निकल चुके हैं, हमारी टीम्स निकली हुई हैं सब डायरेक्शंस. एज सून एज वी गेट हिम वी विल गेट बैक टू यू, वी विल इंट्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट बाय अस.
रॉकी सत्तारूढ़ जदयू की निलंबित विधान पार्षद मनोरमा देवी और बिंदी यादव के बड़े बेटे हैं. बिंदी यादव की छवि गया के बाहुबली नेता की है. इस मामले से जुड़े घटनाक्रमों के कारण मनोरमा देवी और बिंदी यादव दोनों को जेल जाना पड़ा था. ये दोनों पहले ही जमानत पर रिहा हो चुके हैं. रॉकी की जमानत रद्द होने पर अपनी प्रतिक्रिया में जदयू प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा,
हाई कोर्ट के निर्णय से हम संतुष्ट नहीं थे, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करने गए और सुप्रीम कोर्ट ने तथ्यों को देखते हुए, जन भावना का सम्मान करते हुए और रॉकी यादव के बाहर आने से माहौल जो बिगड़ा है उसको देखते हुए रॉकी यादव की जमानत रद्द कर दी, क्योंकि सरकार ने अपना पक्ष मजबूती से रखा. इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं. बिहार में पिछले एक महीने में जिस तरह से चार बेल हुई है और बिल्कुल जन भावना के विपरीत वो बेल हुई है, तो कहीं ना कहीं अब सुप्रीम कोर्ट से आग्रह भी करेंगे कि थोड़ा संवैधानिक बेंच से रिव्यू भी करें.
रॉकी को हाईकोर्ट से जमानत मिलने पर बिहार के विपक्षी दलों ने तब बिहार सरकार को निशाने पर लिया था. भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले का स्वागत किया है. पार्टी प्रवक्ता संजय मयूख ने कहा कि आगे से बिहार सरकार को सतर्क रहने की भी जरूरत है.
हाईकोर्ट के निर्णय से हम संतुष्ट नहीं थे, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करने गए और सुप्रीम कोर्ट ने तथ्यों को देखते हुए, जन भावना का सम्मान करते हुए और रॉकी यादव के बाहर आने से माहौल जो बिगड़ा है उसको देखते हुए रॉकी यादव की जमानत रद्द कर दी, क्योंकि सरकार ने अपना पक्ष मजबूती से रखा. इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं. बिहार में पिछले एक महीने में जिस तरह से चार बेल हुई है और बिल्कुल जन भावना के विपरीत वो बेल हुई है, तो कहीं ना कहीं अब सुप्रीम कोर्ट से आग्रह भी करेंगे कि थोड़ा संवैधानिक बेंच से रिव्यू भी करें.
बीते करीब दो महीने में चार चर्चित मामलों में अभियुक्तों को पटना हाईकोर्ट से जमानत मिली थी. रॉकी यादव सहित यह दूसरा मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द कर दी है. इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर को राजद के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन को मिली जमानत रद्द कर दी थी. मनीष शांडिल, बीबीसी पटना.
भारत प्रशासित कश्मीर में जम्मू के सीमावर्ती इलाके के आर पार हो रही गोलाबारी से आम लोग परेशान हैं और काफ़ी डरे हुए हैं. भारतीय सीमा सुरक्षा बल का दावा है कि पिछले हफ्ते से लगातार पाकिस्तानी रेंजर ने फायरिंग की, जिसमें दो जवान और एक बच्चे की मौत हो गई है. वहीं आज जवाबी कार्रवाई में भारत की तरफ से कई पाकिस्तानी रेंजरों को मारे जाने का दावा भी किया गया है. इस बीच कश्मीर घाटी में आंदोलन की तीव्रता कम होने के बावजूद आज भी प्रशासन ने जुमे की नमाज अदा करने की अनुमति नहीं. और जानकारी के साथ श्रीनगर से रियाज मसरूर.
दक्षिणी कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में कम से कम तीन जिलों के सीमावर्ती क्षेत्रों में 250 से अधिक गांव सीमा पर तनाव से प्रभावित हैं. बीएसएफ अधिकारियों ने बताया कि पिछले एक सप्ताह में हीरानगर, आरएसपोरा और दूसरे सेक्टरों में एक बच्चा और दो बीएसएफ जवान मारे गए, जबकि 10 से अधिक लोग घायल हैं. पाकिस्तानी रेंजर्स की लगातार फायरिंग और शेलिंग से अरनिया, अब्दालिया, कानाचक और दूसरे सेक्टरों में सीमा के निकट रहने वाले सैकड़ों लोग पलायन कर चुके हैं. प्रशासन इस स्थिति से कैसे निमट रहा है? जम्मू रेंज के इंस्पेक्टर जनरल दानिश राणा कहते हैं,
हमारी भी पूरी कोशिश है कि सिविलियंस जो वनरेबल एरियाज में हैं उनके टाइमली इवैक्यूएशन जो है वो कर सकते हैं, उसके लिए पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं. मैं जिधर शेलिंग एरियाज हैं या फायरिंग एरियाज हैं, हमारे पास बंकर्स हैं, आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि जितने से जो भी सिविलियंस जो हैं मुश्किल में हैं, हम उनको सक्सेसफुली इवैक्यूएट करें.
इस बीच भारतीय मीडिया ने सूत्रों के अनुसार खबर दी है कि बीएसएफ ने सीमा पर पाकिस्तानी रेंजर्स की फायरिंग के जवाब में भरपूर कार्रवाई करके 15 रेंजर्स को मार गिराया है. ताहम बीएसएफ के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल धर्मेंद्र पारिख ने इस खबर की पुष्टि नहीं की. गौरतलब है कि जम्मू क्षेत्र में 193 किलोमीटर लंबी सीमा को पाकिस्तान वर्किंग बाउंड्री कहता है, जबकि भारत सरकार इसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहती है. दोनों देशों के बीच इस सीमा और कश्मीर की लाइन ऑफ कंट्रोल पर संघर्ष विराम का समझौता 2003 में हुआ था, लेकिन तब से ही दोनों देश एक दूसरे पर इस समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाते रहे हैं. इस बीच आज फिर एक बार प्रशासन ने जुमे का अलगाववादी मार्च रोकने के लिए ऐतिहासिक जामा मस्जिद को सील कर दिया, जिसके कारण आज भी इस मस्जिद में जुमे की नमाज नहीं हो सकी. हाल ही में रिहा किए गए अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक ने इस प्रतिबंध को धार्मिक अधिकारों में सरकारी हस्तक्षेप बताया है.
Imagine a situation if in Delhi the biggest mandir is closed down by the government and nobody is allowed entry for 15 days. You will have anarchy, you will have killings on the street.
मीरवाइज कहते हैं कि अगर भारत के किसी दूसरे क्षेत्र में किसी मंदिर पर प्रतिबंध लगाया जाए तो वहां खून खराबा हो जाएगा, लेकिन यहां लोगों के धार्मिक अधिकारों में सरकार हस्तक्षेप करके इसे लॉ एंड ऑर्डर का नाम देती है. ताहम सरकार का कहना है कि अलगाववादी नेता मस्जिदों और दरगाहों का राजनीतिक प्रयोग करके लोगों में सरकार के प्रति नफरत फैलाते हैं. गौरतलब है कि घाटी में पिछले 3 महीने से ज्यादा समय से अलगाववादी आंदोलन जारी है. बंद के कारण आम जनजीवन ठप है और प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध ऑपरेशन में हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया है. यह आंदोलन 8 जुलाई को चरमपंथी कमांडर बुरहान वानी की पुलिस ऑपरेशन में मृत्यु के बाद शुरू हुआ था. रियाज मसरूर, बीबीसी, श्रीनगर.
बीबीसी इंडिया बोल. कश्मीर में कर्फ्यू और हड़ताल से बच्चों के भविष्य पर सवालिया निशान। 3 महीनों से पढ़ाई बंद और अब स्कूलों पर भी हो रहे हैं हमले। क्या है कश्मीरी बच्चों का भविष्य? इसी मुद्दे पर होगी इंडिया बोल में बहस शनिवार 29 अक्टूबर को। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इन नंबरों पर मुफ्त टेलीफोन करें 1811-7000 और 1800-102-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
और अब समय है विवेचना का। भारत में बहुत कम गजल गायकों को इतना सम्मान मिलता है जितना बेगम अख्तर को। उनकी शास्त्रीय संगीत पर पकड़, उर्दू शायरी की समझ, गजब की आवाज़ और ज़बरदस्त गायकी का अब तक कोई सानी नहीं मिलता। उनकी 42वीं पुण्यतिथि पर उनके जीवन से जुड़े कुछ प्रसंगों को याद कर रहे हैं रेहान फजल आज की विवेचना में।
दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे वरना कहीं तकदीर वरना कहीं तकदीर तमाशा न बना दे।
जब भी बेगम अख्तर के चाहने वाले उनकी ये गजल सुनते थे वो एक दूसरी ही दुनिया में चले जाते थे। वहां सिर्फ एक ही चीज माने रखती थी, उनकी हीरे की नाक की लौंग की चमक और उनकी अद्वितीय आवाज। किस्सा यह है कि एक बार उनकी मां मुश्तरी बेगम उन्हें बरेली के पीर अजीज मियां के पास लेकर गईं। पीर ने उनसे अपनी गजलों की किताब खोलने को कहा। उन्होंने जिस पन्ने पर हाथ रखा उस पर बहजाद लखनवी की ये गजल लिखी थी। पीर ने कहा कि अगली रिकॉर्डिंग में इस गजल को सबसे पहले गाना। बेगम अख्तर ने यही किया और पूरे भारत ने उन्हें हाथों हाथ लिया। बेगम अख्तर ने उर्दू के सभी महान शायरों के साथ साथ उस समय के उभरते हुए शायरों को भी गाया। जिगर मुरादाबादी भी उनमें से एक थे। बेगम अख्तर की शिष्या शांति हीरानंद कहती हैं कि जिगर के लिए उनके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर था और वो उनसे खुलेआम फ्लर्ट करती थी।
जिगर साहब आते थे रहने के लिए वहाँ, उनकी बेगम भी आ जाती थी, मोटी सी लाल लाल बाल उनके गरारा पहने हुए काली सी, खुद तो बहुत ही बदसूरत थे। अलग से कमरे में वरंदा अलग वो सब कुछ उसमें रहते थे, वो बहुत खातिर करती थी और वो गज़लें भी देते थे इनको लिख। जिगर की गज़ल किसका ख्याल कौन सी मंजी मुझे बहुत अच्छी लगती। इसका भी एक किस्सा है कि जिगर साहब ने उनको ये गज़ल दी, उन्होंने धुन बनाई दरबारी में और गाया तो जिगर साहब जो थे उनको तो दौरा पड़ गया उसी वक्त, वो सब गाना वाना रुक गया, वो अस्पताल पहुंचाए गए। एक दफ़ा कहने लगी उनसे कि मियाँ अगर हमारी आपकी शादी हो जाती तो कितना अच्छा होता, आपकी शायरी हमारे और हमारी आवाज़। तो कहने लगे बिब्बी अगर उल्टा होता तो। वो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करते थे।
बेगम अख्तर चेन स्मोकर थी। प्रोफेसर सलीम किदवई उन्हें नज़दीक से जानते थे और उनके आखिरी दिनों में उनके बहुत करीब थे।
दिल्ली में इन्होंने हमसे कहा सिगरेट पीते, हमने कहा जी हाँ पीते मगर आपके सामने नहीं पियेंगे। देखिए हमारे वालिद इंटेंशन के मेरे अस्पताल तो देखने आई तो बहुत बड़ा बास्केट फलों की बहुत अच्छी तरह से अरेंज्ड और बीच में 4 डिब्बी सिगरेट हमारे लिए, वहाँ उनके साथ रह रहे थे हॉस्पिटल में। तो इस किस्म के बहुत लाइवली इंसान थी, फिक्र बहुत थी वालिद की मगर साथ साथ उनको हमारी भी फिक्र थी कि सिगरेट वहाँ पीने को नहीं मिल रही होगी।
सिगरेट से जुड़ा ही एक दिलचस्प किस्सा शांति हीरानंद बताती हैं। एक बार वो ट्रेन से महाराष्ट्र से गुजर रही थी, रात को अचानक उनकी सिगरेट खत्म हो गई।
रात के 2 बजे कहने लगी बिटन वो सिगरेट खत्म हो गया, अब कैसे करें। अब उनको थी हुक सिगरेट की, अब कैसे कैप्टन पिया करते नहीं। तो एक छोटे स्टेशन पे गाड़ी रुकी तो कहने देखो है कोई दुकान, हमने कहा यहाँ तो अंधेरा ही, हट तुम बौका कहेंगी अपने, खड़ी हो गई उस जमाने में और वाकई में अंधेरा था, कुछ था ही नहीं, पर गार्ड खड़ा था पीछे दूर, उसको बुलाया अरे मेरे भैया अरे मेरे, वो दौड़ा दौड़ा उसने सोचा कि कोई परेशानी होगी। कह लेंगे बेटा यहाँ कहीं सिगरेट मिलेगी, उसने कहा कोई था महाराष्ट्रन कहना यहाँ सिगरेट नहीं मिलता, ऐसा बोल। अरे मेरे बच्चे, तुम्हारे बच्चे जीते रहे, तुम्हारा ये हो तुम्हारा वो हो, वो बेचारा हक्का बक्का ही रह गया, उसकी झंडियाँ दोनों ले ली, उसकी लैंटर्न पकड़ ली और 200 रुपये उसको पकड़ा दिए। अब वो क्या करता, वो दौड़ा दौड़ा बाहर गया स्टेशन, वहाँ से कहीं पान वान की दुकान होगी, वहाँ से लेके आया सिगरेट, तब उसको इतनी दुआएं दी और तब गाड़ी चली।
ये न थी हमारी ये न थी हमारी के विशाले यार होता अगर और जीते रहते, अगर और जीते रहते।
बेगम अख्तर की एक और शिष्या रीता गांगुली कहती हैं कि वो हमेशा कहा करती थी कि सीखी हुई चीज कभी बेकार नहीं जाती। एक बार रीता गांगुली और बेगम अख्तर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल गोपाल रेड्डी के निमंत्रण पर नैनीताल के राजभवन गई।
नैनीताल का बहुत खूबसूरत झील है, तो हम बोले अम्मी चलते हैं, हम तो वो तमाम जगह ले गई, इधर उधर घुमाई। मैंने कहा नाव में नहीं चढ़ेंगे। अच्छा उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि उनको पानी से थोड़ा डर था, तो बहरहाल हम जाके बैठे और बैठे तो जो माछी है उसको समझ में आ गया भाई गवर्नर हाउस से वो झंडे वाला गाड़ी से कोई बैठे हैं। उसके पास एक छोटा सा ट्रांजिस्टर था विच नेचुरली ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ। बीच झील में जाके उसने बजाया और वो बज रहा था मेरे सपनों की रानी कब आएगी तुम। तो मैं तो बहुत घबरा गई, मैंने उस माझी को कहा अरे क्या करो ये माखन, बंद करो बंद करो, तुम्हें तो पता भी है कौन बैठी है। अम्मी अचानक बोले क्यों बंद करा रही हो बेटा, वाह 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 क्या आवाज़ है, क्या नाम है इस लड़के का। मैंने कहा अम्मी ये किशोर कुमार हैं। बोले वाह वाह क्या कहने, क्या ऊपर से तरता तररा, ये कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है और क्या गाया इस लड़के ने। बेटा कभी कुछ भी चीज सुनना जाया नहीं जाता है। उसी दिन शाम को नैनीताल क्लब में एक प्रोग्राम था, गवर्नर साहब ने रखा था, एक मैखाना है बज़ में जम नहीं, यहाँ कोई किसी से कम नहीं, तो उसका तर्ज कुछ और था, लेकिन उन्होंने क्या किया, ये मैखाना है बज़ में जम नहीं है यहाँ कोई किसी से कम नहीं है, यानी चलिया तो चलिया उसको इस्तेमाल कर लिया और लोग झूमने लगे, उनको क्या पता एक्चुअली रेफरेंस क्या है।
शांति हीरानंद बताती हैं कि एक बार जब वो मुंबई सेंट्रल स्टेशन से लखनऊ के लिए रवाना हो रही थी तो उनको स्टेशन छोड़ने आए शकील बदायूनी ने उन्हें एक चिट पकड़ाई।
जैसे स्टेशन से गाड़ी अभी जाने ही वाली थी बम्बई से, तो शकील साहब भागते भागते आए, सांस फूली, बेगम साहब बेगम साहब ये गज़ल मैंने आपके लिए लिखी है। उन्होंने कहा अच्छा शकील, उठा बैग में रख लिया। अब क्या हुआ कि भूल गई, और उनकी आदत ये थी कि वो जब सफ़र करती थी तो उनको ये रहता था कि सारा डब्बा खाली रहे, कोई और दूसरा ना हो, ताकि वो आराम से सिगरेट पी सकें, लेट सकें बेतकल्लुफ़ी से। तो सुबह जब हुई और भोपाल आया तो भोपाल में उन्होंने चाय मंगवाई, पी कह लेंगे बिटिया वो गज़ल दी थी उसने। शकील ने जरा देखूं, निकाला बैग, खोला उसमें से वो पर्चा निकाला और पढ़ा, उसको देखा, उसके बाद कह लेंगे वो बाजा निकालना, छोटा सा बाजा था, कन्वर्टेबल था, नीचे बैठ छोटा सा, उसको निकाला, उस पर उंगलियाँ उन्होंने फिराई और ये ऐ मोहब्बत पैदा हुई।
ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना
कुमार गंधर्व और कैफी आजमी से भी बेगम अख्तर की काफी दोस्ती थी। जब भी कुमार गंधर्व लखनऊ आते बेगम अख्तर के यहाँ ही ठहरते। फिराक गोरखपुरी भी उनके कद्रदानों में से एक थे। एक बार वो दिल्ली के एक होटल में ठहरे हुए थे।
आखिरी वक्त में हमको याद है दिल्ली में वो बहुत बीमार थे, मतलब उठ नहीं पा रहे। एयरलाइंस होटल जब हुआ करता था पहाड़गंज में, उसमें वो ठहरे थे। ये निरुला में थी तो मैं गई तो कहने लगी, बिटिया फिराक बहुत बीमार हैं, उनको मिलना चाहिए। उनका फ़ोन भी आया था, टैक्सी मंगाई, पहुंच गए हम लोग तो वहाँ उनका वो नौकर था, वो लेटे हुए थे, हम थे और अम्मी थी। उन्होंने गज़ल दी इनको, शाम गम कुछ इस निगाह नाज की बातें करो, कहेंगे आप गुनगुना दीजिए। तो उन्होंने देखा गज़ल और उन्होंने इस तरह गुनगुनाया, शाम गम कुछ इस निगाह नाज की बातें करो। बस उनके आंखों से आंसू निकलने निकलेंगे, आपने मेरी गजल को आज जिंदगी दे दी।
संगीतकार मदन मोहन के लिए भी बेगम अख्तर के मन में बहुत स्नेह था। बहुत कम लोगों को पता है कि उन्हें मदन मोहन ने ही हारमोनियम सिखाया था। रीता गांगुली याद करती हैं।
कोई भी गायिका उस वक्त की हारमोनियम नहीं बजाती थी, सारंगी से उनकी तालीम होती थी और सारंगी के साथ ही गाया करते थे। बेगम अख्तर उस जमाने की एकमात्र गायिका जो खुद हारमोनियम बजा के गा लेती थी और ये हारमोनियम की तालीम उनको मदन मोहन जी ने दी थी। और मदन मोहन जी के मन में उनके लिए बहुत इज्जत था। जब भी वो जाती थी, उनमें एक दो चार चीज़ें थी, जैसे कलकत्ता जाएं, आप ताज बंगाल में ठहराना चाहें वो नहीं ठहरेंगी, वो होटल ब्रॉडवे में ही ठहरेंगी। अगर अब वो बम्बई गई और ताज महल होटल में उनको रूम बुकड है, स्वीट बुकड है, किसी को और भेज देती थी, खुद जाके साउथ सी ग्रीन होटल में मरीन ड्राइव में उसी में रहती थी। तो वहाँ वो हर बार मदन मोहन जी आ जाते थे अपना हारमोनियम लेके, ऊपर अम्मी बैठती थी और उनके पैर के पास मदन मोहन जी बैठते थे और वो गाना सुनाते थे, अपनी कॉम्पोजिशन सुनाते थे और फिर अम्मी को कहते थे सुनाइए ना कुछ, बेगम साहब कुछ सुनाइए ना। और वो इतने जहन उनका इतना ज़बरदस्त था मदन मोहन जी, उसमें दो चार बार गाने के बाद ही उनके लो दिमाग में वो तर्ज बैठ जाता था। संग ले चल बाके सवरिया नदिया के उस पार हमें संग ले चल, ये अम्मी गाती थी एक दादरा, उसी के तर्ज लेके आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे दिल की है धड़कन ठहर जा मिल गई मंजिल मुझे आपकी नजरों ने समझा।
रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
आप रेहान फजल की विवेचना दोबारा कल सुबह 8 बजे विश्व भारती में सुन सकते हैं। और अब कार्यक्रम का अंत करने से पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। सीरिया के पूर्वी अलेप्पो से सरकार की घेराबंदी हटाने के लिए विद्रोहियों ने हमले शुरू कर दिए हैं। इन हमलों में 15 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा घायल हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि उन्हें पुख्ता रिपोर्ट मिली है कि इस्लामिक स्टेट ग्रुप ने मोसुल से हजारों इराकियों का अपहरण कर लिया है, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। आईएस इन लोगों को मानव ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। स्वीडिश अभियोजन पक्ष ने विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे के उस अनुरोध को ठुकरा दिया है, जिसमें उन्होंने अपने एक सहयोगी के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति मांगी थी। वेनेजुएला की राजधानी कराकस में राष्ट्रपति निकोलस मदुरो की सरकार के विरोध में शुक्रवार को दुकानें, दफ्तर और स्कूल बंद रहे। विपक्ष ने राष्ट्रपति मदुरो को सत्ता से हटाने के लिए और जनमत संग्रह के लिए 12 घंटे की हड़ताल की है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी वाडा ने ड्रग टेस्ट में सामंजस्य की कमी के लिए रियो ओलंपिक के प्रबंधन की आलोचना की है। वाडा की स्वतंत्र पर्यवेक्षक टीम का कहना है कि कई खिलाड़ी टेस्ट के लिए मिल ही नहीं पाए। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रही थी तृप्ति श्रीवास्तव। इसी के साथ दिन भर में बस इतना ही। आपसे 9:30 बजे घटना चक्र में फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत।